तुम कभी भी इस महीने का नाम आता है तो उसके साथ एक मखसूस लफ्ज भी लगाया जाता है और वो है अल मुबारक। मालूम यह हुआ कि ये बरकतों से मामूर महीना है, ताला जल्ले शानहू की खुसूसी रहमतों गैर मामूली उनकी जानिब से दी जाने वाली बरकतों मग़फ़िरत और बख्शिश और दोज़ख से खलासी का ये महीना है। उस सौ से ये बात सुनने में आई हूं, इसके बावजूद इसका जो इरादा किया जाता है उसका मंशा ये होता है रहमतों वाले महीने में हम रहमतों को हासिल कर लें, बरकतों वाले महीने में हम बरकतों को पा लें और मग़फ़िरत वाले महीने में अपनी मग़फ़िरत अल्लाह से करा लें और दोज़ख से खलासी के अता किए जाने के महीने में अपने हक में दोज़ख से छुटकारे का फैसला करा ले, ये मंशा होता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हो कि मग़फ़िरत रहमतें नसीब कैसे होती हैं, इस उसूल से लोग वाकिफ नहीं। हर चीज के पाने का एक उसूल है, कायदा एक जाब्ता है। अगर आदमी उस कायदे और जाब्ते को पूरा करता है तो वो चीज उसे मिलती है। सीधी सी बात, मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि मेरे पास जमीन का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें मैं खेती कर सकता हूं। अगर मैं ये चाहूं कि मेरी उस जमीन में खेती हो तो मुझे इस उसूल को इख्तियार करना पड़ेगा। वो ये कि मैं जमीन को नर्म करूं, उसमें पानी पहुंचाऊं, उसमें बीज डालूं और हद से जरूरत पानी पहुंचाता रहूं और फिर उसकी निगरानी रखूं। इन तमाम कामों के साथ फिर परवरदिगार आलम से दुआ करूं कि ऐ अल्लाह मेरी जमीन में खेती दे दे। तो ऐसी सूरत में मेरी जमीन में खेती की तवक्को है। अगर मैं ये चाहूं कि मेरी जमीन में खेती हो तो फिर इस उसूल को, इस जाब्ते को, इस कायदे को इख्तियार करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी जमीन में खेती हो जाए लेकिन मैंने जमीन को नर्म नहीं किया, पानी उसमें नहीं पहुंचाया, बीज उसमें नहीं डाला, सारे मिस्कीन शाह के मुसल्लियों की खिदमत में गुजारिश पेश किया कि रमजान का महीना है, आप सब रोजे से हो, सुबह से लेकर शाम तक आज आप सब मेरे साथ मिलकर इस दुआ में मशगूल हो जाओ कि मेरी जमीन में खेती हो जाए। न जमीन में मैं हल चलाता, न उसमें बीज डालता, न उसमें पानी पहुंचाता, आप सबसे यूं कह रहा हूं कि मेरी जमीन में खेती हो जाए, इसकी दुआ कर दो, बदलाओ मेरी जमीन में खेती हो जाएगी। फायदा नहीं है, उसूल नहीं है ऐसा। किसी भी चीज के पाने के वास्ते फायदा है, एक उसूल है। अगर आदमी उस उसूल को इख्तियार करता है तो उससे फायदा होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों ये जानना चाहिए कि रहमतों को हासिल करने का क्या उसूल होता होता है जो अल्लाह ने बताया, और मग़फ़िरत के पाने का क्या उसूल और कानून है जो अल्लाह ने बताया, ताकि हम उस उसूल को इख्तियार करें तो फिर अल्लाह की रहमत मिल जाए, अल्लाह की मग़फ़िरत मिल जाए। और जिसको ये मिल गई उस کی رحمتوں سے محروم رہ جائے. سنا ہوگا آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے, سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. جب خطبے سے فارغ ہو گئے صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا, وہ یہ کہ آپ نے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا تھا. ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ نے آمین کس سلسلے میں فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس وقت میں منبر پر چڑھ رہا تھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے, جلیل القدر فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل, ان کا کام تھا اللہ کے پاس سے وحی لے کر آنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آئے اور یہ بدعا دینے لگے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے ملے پھر اس کی مغفرت نہ ہو. میں نے اس پر آمین کہی. سوچنے کی بات, ہمیں بدعا دینے والے جبرائیل امین ہے, اللہ میاں کیا مقرب ترین فرشتے جن کی ذمہ داری اتنی کہ نبیوں کے پاس میں آنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا
جانتا ہے. عمومی جو حال ہے وہ تو بڑا عجیب غریب قسم کا
खाने पीने का महीना नहीं, ये तो रूह को खिलाने का महीना है, जिस्म को खिलाने का नहीं। जिस्म को तो अल्लाह भी खिलाई देते हैं, हमारी फिक्रों में जिस्म को खिलाना पिलाना नहीं रहना, ये तो उनकी मेजबानी का महीना है, वो खुद मेजबानी कर लेते रहते हैं। हमको जिस चीज का एहतमाम करना है वो है अपनी रूह को खिलाने का। एक तो इसका महीना बना जाना लोगों ने, दूसरा ये कि जिसके दिल दिमाग में देखो एक ही भूत सवार है, कौन सा कपड़ा खरीदूं, कहां सिलाऊं और कैसा लिबास सिलाऊं, जूता खरीदूं तो कौन सा, ये सामान ऐसा और ये सामान ऐसा और ये सामान ऐसा, चीजों के हासिल करने का महीना बना जाना, नेकियों के हासिल करने का महीना था और चीजों के हासिल करने का महीना बना था। अरे तीसरी चीज देखिए कैसी है, रमजान के जो औकात है सबसे बेहतरीन औकात मिलने मिलते ही मौके साहब, इतना कीमती वक्त है रमजान का और इसका एक एक लम्हा इस दर्जे कीमती है आदमी तसव्वुर और अंदाजा नहीं कर सकता है इस दुनिया में रहते हुए कि रमजान मुबारक के औकात कितने कीमती है। बेहतरीन औकात रमजान। अच्छा बताओ कि सबसे बदतरीन जगह कौन सी, सबको मालूम है जो बार बार दीन की बातें सुनते रहते हैं, और मुमकिन है कि खतीब साहब ने भी बार बार आपको सुनाया होगा कि बदतरीन जो मकामात है वो है बाजार, बहुत बुरे, बदतरीन से मुराद बहुत बुरे जो मकामात है वो है बाजार, और बेहतरीन जो औकात है वो है रमजान के, और बेहतरीन जो मकामात है वो मस्जिदें हैं। तो देखो रमजान के बेहतरीन औकात, बेहतरीन मकामात पर गुजारना कितनी समझदारी की बात, बेहतरीन वक्त बदतरीन जगह हो, कितनी बुरी बात है, नहीं बुरी बात, नाराज नहीं होना बोलने पे, और अगर तुम नाराज हो गए तो हमारे क्या बिगड़ने वाला है। बेहतरीन औकात को बदतरीन जगह गुजारना कोई समझदारी की बात नहीं। अगर आप देखेंगे कि बड़ा हिस्सा नौजवानों का खुसूसन बाजारों में हो सकता है, जहां के बारे में तो नहीं बोलता हूं इस वास्ते कि यहां मैं देखा ही नहीं हूं तो बोलूंगा क्या, अमूमी हाल शहर का जो देख रहे हैं वो बोले। हो सकता है कि इस मस्जिद के नौजवान अपने औकात को मस्जिद ही में गुजारते होंगे, आखिरी अशरे में तो मस्जिदों में आके पड़ जाना, रमजान के आखिरी दहे में क्या करना, मस्जिदों में आके पड़ जाना और क्या बोलना, ए अल्लाह मियां मगफिरत का भिखारी बनकर आया हूं, बख्शीश लूंगा तो जाऊंगा, यूं पड़ जाना। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मौलाना ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह,
जाते जाते
चिट्ठी लिख के भेजा थी। चिट्ठी में लिखा हुआ
परवरदिगार इससे राजी हो जाए कि नहीं हो जाए। आज मेरा बाजार में तो ये देखे
بخشش مل جائے. بخشش ملنے کا اصول کیا ہے, ضابطہ کیا ہے, وہ مجھے بتا رہا تھا حسن. اس کی بہت سی چیزیں, رمضان مبارک میں فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے عام طور پر وہ وقت زیادہ تفصیلی گفتگو کا نہیں ہوتا, اس کی بنا پر میں مغفرت والے اصول کو زیادہ اس موقع پر تفصیل سے نہیں عرض کر سکوں گا. ایک بات البتہ بنیادی حیثیت سے عرض کرنے کا ضرور خیال ہے, وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہماری اپنی جو حیثیت ہے محتاجی کی, فقر کی, ضرورت مندی کی, دوروں کی, کوتاہی جو ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. وہ سنا ہوگا آپ نے کہ محمود ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا, اس کے پاس ایک غلام آیا, اس کا نام تھا ایاز. تھوڑے ہی دنوں میں محمود کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو گیا, بہت زیادہ اسے قریب کر لیا اور اچھے اچھے اس کو منصب دے دیا, بڑی بڑی ذمہ داریاں اس کے حوالے کر دی, بڑی عزت لوگوں کے درمیان میں اس کی ہونے لگی, بڑا اعتماد اس کے اوپر کرنے لگا محمود, اپنے غلام پر بڑا اعتماد کرنے لگا. یہ پرانے پرانے وزیروں کو بڑا اثر ہوا. کسان کے دیر سے ہمارے کو بادشاہ اتنا نہیں چاہتے جتنا اسے چاہتے, ہم کو اتنا قریب نہیں کیا جتنا اس نئے کو قریب کر دیا, ہماری عزت آج اتنی نہیں ہو رہی جتنی اس نئے غلام کی ہو رہی. ہم فکر میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے اس کی خرابی تلاش کرنا اور اس کی کوئی برائی بادشاہ کو بتلانا تاکہ بادشاہ کو اس سے نفرت ہو جائے اور یہ اس کو اپنے سے دور کر دے اور ہم کو اپنے سے قریب کر دے. اس فکر میں اور 24 گھنٹے اس کی برائی کے ڈھونڈنے میں لگ گئے. جب کسی سے ٹھن جاتی ہے تو پھر ایک ہی فکر نہیں پی آتی ہے کہ برائی کیا ہے تلاش کرنا, اور یہ بہت بری عادت ہے. برائی تلاش کرنے کی جو عادت ہے بہت بری عادت ہے. حضرت مولانا حلیمیہ ندوی دانشور کا تو ہم ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر کے معروف اور مشہور عالم دین ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ برائیوں کے تلاش کرنے کی جو عادت ہے نا وہ کسی اچھی چیز کے نہیں بلکہ برے جانور کی عادت ہے. برائیاں تلاش کرنے کی جو عادت ہے وہ بد جانور کی عادت ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال وہ آیات سے حسد ہو گیا وزیروں کو, के आखिर उसको खोल के क्या देखता है। बादशाह को भी ताज्जुब हुआ, उसने कहा कि भाई तेरे संदोख का फलसफा क्या है, जरा मुझे बतला दे। आखिर तू क्या करता है जबकि इसमें कोई खास चीज रखी हुई नहीं। उसने एक बड़ी अजीब बात कही, उसने ये कहा कि बादशाह सलामत, ये मेरा खटा पुराना जोड़ा है, रोजाना मैं इसको कमरा बन करके आपके अता करदा जितने शानदार जोड़े हैं ये उतार देता हूं, और अपना ये पुराना लिबास पहन लेता हूं। कमरे में मैंने कद्दे आदम आईना लगा रखा है, वो आईने के सामने जाके खड़ा हो जाता हूं, उसमें अपने आप को देखता हूं और देख के अपने आप को मुखातब करके कहता हूं कि अयाज शानदार लिबास बादशाह के लिए हुए, एजाजात पूरे बादशाह का हदिया, मनसब पूरे बादशाह की नवाजिशें, अच्छे खाने पीने सब के सब बादशाह के अताया, जितना कुछ तेरे पास है वो सब के सब बादशाह की मेहरबानी का नतीजा है। जहां तक तेरा ताल्लुक है देश तेरी ये हकीकत है, तू गुलाम था, तू मोहताज था, तू बेहैसियत था, तेरे पास तो पहनने के वास्ते एक जोड़ा के बराबर नहीं था, और अभी भी तेरी वही हालत है कि तू मोहताज के मोहताज है। जो कुछ तुझ पर है सब बादशाह का हदिया है, इसको याद रखना, भूल मत जाना। वो दादा आईने के सामने जाके खड़े होके अपनी ये सूरत बता के बोलता हूं कि आया तू ये है, बाकी इससे हटकर तेरे पास जो कुछ है बादशाह का हदिया है। किताबों में लिखा है कि वो बोलता था आईने के सामने जाके खड़े होके, अयाज हजरत खुदरा पेशनास, अयाज अपने आप को पहचानो, देखो तुम्हारी हकीकत ये। मेरे भाइयों, एक इंसान की गुलामी करता है तो उसकी जानिब से मिलने वाले हतियों बख्शिशों इनामात और इकरामात की यूं कदर करता है। जरा हम सोचें कि रमजान जैसी अजीम शान नेमत की, कुरान जैसी अजीम शान नेमत की, रोजे जैसे अजीम शान हुक्म की, और तरावीह जैसी अजीम शान सुन्नत की हम कितनी कदर कर रहे हैं। सर से लेके पांव तक नेमतों में डूबे हुए, जिंदगी उनकी, जिस्म उनका, आजा व जवान है उनके, सर से लेके पांव तक एक एक नेमत उनकी, और एक दो सौ हजार लाख दो लाख करोड़ दो करोड़ बेहद तो बेहिसाब नेमतें हैं जो अल्लाह ने अता कर रखी। गिन नहीं सकता पूरी दुनिया के साइंसदान, पूरी दुनिया के रियाजीदान और पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स मिलकर मेरे परवरदिगार आलम की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें हैं। वही तौद्दु नेमत अल्लाह इला तहसुहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। ऐसे परवरदिगार आलम की जानिब से ये नेमतें मिल रही हैं, कुरान की सूरत में, रमजान की सूरत में, रोजों की सूरत में, तरावीह की सूरत में, एतकाफ की सुन्नत वाली सूरत में। तो मेरे भाई ये बताओ कि इन नेमतों की कदर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? इन नेमतों की सही माना में कदर हो जाए इसके लिए क्या करना, जो कोताहियां रोजों में हो गई अफ्तारा से माफी मांग के बाकी रोजे सही रखें। तरावीह में अब तक जो कोताही हो गई माफी मांग के बाकी तरावीह ठीक पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत में अब तक जो कोताही हो गई उस कोताही पर माफी मांगते हुए कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम ज्यादा करना, दुआओं में अल्लाह से मांगने में जो कुछ कोताहियां हुई इस मांगने की कोताहियों पर माफी मांगकर खूब दुआओं का एहतमाम करना, दूर शरीफ पढ़ने में कोताही हुई तो इस कोताही की माफी मांगकर दूर शरीफ की कसरत करना। हदीस में आता है कि कलिमे तैयबा ज्यादा कसरत से पढ़ा करो, रमजान मुबारक में इस वास्ते कलिमे तैयबा को खूब कसरत से पढ़ना। और जब अल्लाह मियां ने रमजान मुबारक में अपने घर को बुला लिया और नमाजों की तौफीक दे दी, रोजों से वा... पहली बार है और जो ये जाते हैं रिक्ता रे नौजवान इंडिया भाषा था। गुजिश्ता रमजान के बाद मैं एक मस्जिद को गया था तो बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था नौजवानों का इज्तिमाई ये हुआ, नौजवानों का इज्तिमाई ये हुआ ये लिखा हुआ था। ये नौजवान बच्चे उर्दू समझते नहीं समझते पता नहीं भाई, ये हुआ बोले तो किसी को गैप कर दे रहा है। नौजवानों का इज्तिमाई ये हुआ बोले तो नौजवानों को इज्तिमाई हैसियत से सबको गैप कर दी, ये मक़ूम हो गया उस पर। तो पोस्टर पे लिखा हुआ था नौजवानों का इज्तिमाई ये हुआ, दूर से मोटा लिखा हुआ देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं जरा करीब पहुंच के पढ़ना चाहा कि आखिर ये क्या है ऐलान, तो जरा नजदीक जाके देखा तो नीचे तफसील लिखी हुई। क्या लिखा था? ये लिखा था कि रमजान मुबारक के आखिरी दिन तक नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मस्जिद में दिखाई देती थी, जो ही ईद का चांद नजर आया ये सारे के सारे नौजवान गायब हो गए, पता नहीं कहां चले गए। मस्जिद को इन नौजवानों की बड़ी फिक्र है और मस्जिद इस सिलसिले में उनकी तलाश में है। जिस किसी को ये नौजवान मिल जाए उन सबको मस्जिद को पहुंचा दो, अल मुंतजिर मस्जिद ये लिखा हुआ था। कोई कहीं ऐसा ना हो कि अब फिर ऐसे ही पोस्टर लगाना पड़े। देखो रमजान मुबारक जा रहे और अल्लाह मियां ने अपने घर को बुलाया, नमाजों की तौफीक दे दी, कुरान से ताल्लुक दे दिया, तरावी माशाल्लाह से पढ़ रहे, देख के नमाजों में मुसल्लियों की तादाद को जी खुश हो, जगह नहीं मिल रही, वजू करने को वजू खाने में जगह नहीं, नमाज पढ़ने को मस्जिद में जगह नहीं, लोग सीढ़ियों के पास खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं, जूतों के पास खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं, जहां उनको जगह मिल गई वहां देखो लोग नमाजें अदा कर रहे हैं, जगह ही नहीं है मस्जिदों के अंदर माशाल्लाह तादाद इतनी। लेकिन जो ही ईद का चांद नजर आया फिर वही दो चार पक्षियों के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता मस्जिद के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि हमने रमजान मुबारक की यह कदर की कि जिस दिन को अल्लाह ने ईद के दिन बनाया था रमजान के आमाल में कामयाबियों के हासिल करने की बुनियाद पर, उसी ईद के दिन हमने अल्लाह से दुआ शुरू किया। बताइए कि वो ईद क्या है? ये ईद वो ईद भी कोई ईद है जिस ईद में अल्लाह नाराज हो गए। तो मेरे भाई और बुजुर्गो समझदारी और होश के साथ में आदमी काम करे अपने आप को अपने अल्लाह से जोड़े रखे। मुरीद अपने पीर से इतना ताल्लुक रखता है वो यूं कहता है कि मैं तो आपके दर को छोड़कर जा नहीं सकता, बताओ इस बंदे के वास्ते क्या ये बात जेबा है कि अल्लाह के दरबार को छोड़कर चला जाए। तो इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गो बहुत कीमती औकात है, बहुत जरूरी ये लम्हात है, इसमें हमको अपने परवरदिगार को राजी कर लेने का एहतमाम करना है। तो मग़फ़िरत के पाने के उसूलों में से एक उसूल और कानून ये है कि अपनी जितनी कोताहियां हैं उन तमाम कोताहियों पर सच्ची और पक्की नदामत हो और तमाम कोताहियों के बारे में हक़ायक़ निशानों से माफी मांगे और ये इरादा करे कल्ब में कि अब मैं अपनी इम्कान हर कोशिश के जरिए से इस बात का एहतमाम करूंगा कि अल्लाह की नाफरमानी न हो और उसके हुक्मों की ताबेदारी और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों की पैरवी में अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। अगर हमने ये उसूल जिंदगी में दायर किया तो समझ जाना चाहिए कि मग़फ़िरत के पाने के उसूलों में से एक अहम तरीन उसूल को हमने अख्तियार किया। इंशाअल्लाह इस रास्ते से बख्शिश मिलेगी, मग़फ़िरत मिलेगी, रहमत मिलेगी, अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा। अल्लाह करे कि ये रमजान हम सबों के वास्ते हर किस्म की रहमतों का बरकतों का मग़फ़िरतों का सबब और ज़रिया बने और इस रमजान को हम तारा जल्ले शानों हमारे हाथ में कुछ ऐसा बना दे कि साल के 12 महीने अल्लाह से खुसूसी ताल्लुक इसके जरिए से कायम हो जाए, कुरान पाक से मुस्तक़िलन वाबस्तगी कायम।